हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन।
ओम शांति। आज का जो सब्जेक्ट है कि हम अपने को संपूर्ण स्वस्थ रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखें। ये शरीर और उसमें बैठकर आत्मा अपना काम कराती रहती है। आत्मा मस्तिष्क के द्वारा शरीर का संचालन करती रहती है। शरीर पांच तत्वों का बना हुआ कवरिंग है। उसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं। सबसे ऊपर मस्तिष्क है, ब्रेन, फिर हमारे हृदय, लंग्स, फेफड़ा, आंतें, बोन्स, इन सबसे मिलकर शरीर बना हुआ है। सबसे बड़ी खूबी इस शरीर की है कि ये हर लेवल पे काम करता रहता है, चेतना के लेवल पे भी और अचेतना लेवल पे भी, कॉन्शियस लेवल पे भी और सबकॉन्शियस लेवल पे भी। मस्तिष्क से शरीर को चलाने के लिए, गति देने के लिए और गति को कम करने के लिए नसें बनी हुई है। इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम बना हुआ है। नर्वस सिस्टम भी इस तरीके का है जैसे कि तारे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, तो लाइट है, करंट है। इसी तरह से मस्तिष्क से लेकर शरीर के हर अंग में नसें जाती है, नर्वस सिस्टम जाता है। दो तरह का नर्वस सिस्टम काम करता रहता है, एक है शरीर की गति को बढ़ाता है, एक है शरीर की गति को कम करता है। एक को कह लें एक्सेलरेटर और एक को कह दें ब्रेक। दोनों तरह की वायर्स शरीर के हर अंग में जाती है, इसीलिए दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ब्रेक हटा दें, ब्रेक वाली तार हटा दें, तो हार्ट जो 70 और 80 पे चलता है 100 120 तक चला जाए, यानी बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ब्रेक इसलिए दी गई है, ब्रेक वाली तार इसलिए दी गई है कि जब हृदय धड़के और रिलैक्स करे तो खून वापस आ जाए। जब वो धड़कता है तो काम करता है और जब रिलैक्स करता है तो खून वापस आता है। इसीलिए दोनों तरह की तारें शरीर के हर अंग में दी है, काम के समय काम और आराम के समय आराम। गाड़ी चलाइए पर गाड़ी को ठीक से चलाइए, इसलिए एक्सेलरेटर भी दिया है, ब्रेक भी दिया है। अगर ब्रेक नहीं हो तो कार का जैसे एक्सेलरेटर पे ही हमेशा पांव हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए दोनों चीजें लगाई गई है। गाड़ी में तो क्लच भी रहता है, पर शरीर में क्लच है अपनी बुद्धि। अब ये खेल स्वास्थ्य का, चेतना शक्ति आत्मा के संकल्पों के द्वारा संचालित होता है। क्योंकि बहुत मोटी चीजें दूंगा, इसकी काफी गहराई है, पर मेन चीजें दूंगा। अब स्वास्थ्य का अर्थ है कि मेरा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से मैं स्वस्थ रहूं। केवल बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि मैं बीमार नहीं हूं तो मैं हेल्दी हूं, पर ये कह नहीं सकते, क्योंकि जो हम ऊपर से देखते हैं और जो अंदर ही चेंजेस, परिवर्तन हो रहे हैं, कोई कह नहीं सकता। सिंपल ले लें हृदय और हृदय को खून देने वाली धमनी उसमें कोलेस्ट्रॉल का चिपकना कहां तक हो गया है किसी को पता नहीं लगेगा, जब तक वो बहुत ज्यादा चिपक गया है, 70% उसको ब्लॉक कर रहा है, तब व्यक्ति को दर्द आना शुरू होगा। जबकि डायबिटीज ब्लड शुगर उसकी बढ़ गई है, हो सकता है उसकी कैपेसिटी अच्छी है तो उसको कोई सिम्टम नहीं आएगा। ब्लड प्रेशर उसका 90 से नीचे वाला ऊपर जा रहा है, 100-110, और सडनली कुछ हुआ, स्ट्रोक हुआ, तब पता लगा कि इसको ब्लड प्रेशर था, जबकि उसको ब्लड प्रेशर पहले से ही था। तो शरीर की कैपेसिटी इतनी रहती है कि वो बॉडी को एडजस्ट करता है। इसीलिए बीमारी का केवल न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, शरीर से, मन से, हमारे भावनाओं से और हमारे आध्यात्मिक रूप से, हम चेतन मन से ठीक रहते हैं तभी हम स्वस्थ हैं। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं स्वास्थ्य, हिंदी का बहुत अच्छा वर्ड है। स्वास्थ्य का अर्थ हुआ स्व मीन्स खुद, आस्था मीन्स मेरा कॉन्शियसनेस, मेरी सीट। जब मैं अपनी सीट पर सेट हूं तो मेरी हेल्थ अच्छी है, जब मैं सीट पर सेट नहीं हूं तो अपसेट हूं। अपसेट का अर्थ है बीमारी, सेट का अर्थ है हेल्थ। तो इसीलिए पूरा ज्ञान का आधार भी जो बाबा ने आके बताया है कि बार बार अपनी सोमान की सीट पर सेट रहो, सेट हूं तो हेल्थ है। तो स्वास्थ्य का अर्थ हुआ स्व के ऊपर आस्था, स्व के ऊपर विश्वास। अगर मेरा खुद के ऊपर खुद का विश्वास अच्छा है, सकारात्मक है, तो मेरी हेल्थ अच्छी होगी। तीसरी डेफिनेशन है आयुर्वेदा की, बहुत अच्छी कहावत है, पांव गरम पेट नरम सिर ठंडा। पांव नरम पेट नरम, पांव गरम पेट नरम सिर ठंडा, ये तीन चीजें हैं। हमारा सिर हो गया कश्मीर, हमारे पैर हो गए कन्याकुमारी, तो हमारा पांव क्या होना चाहिए, गरम, इसलिए साउथ गरम, साउथ पोल गरम होना चाहिए। पेट हमारा बीच का है, आते नरम होना चाहिए, और हमारा कश्मीर ठंडा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तो पूरा हेल्थ अच्छी रहेगी। चौथी डेफिनेशन है जो आजकल काफी इसको मान्यता मिली है, ये मान्यता इसके आधार पर है कि हमारा स्वास्थ्य हेल्थ हमारी ऊर्जा शक्ति पर निर्भर करता है। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, इसीलिए होम्योपैथी में माना जाता है कि बीमारी को ठीक ना करो, व्यक्ति को ठीक करो। डू नॉट ट्रीट द डिजीज, ट्रीट द पर्सन। उन्होंने बताया कि शरीर में जो वाइटल फोर्स होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है, वो ठीक है तो शरीर भी ठीक होगा। फिर आजकल एक और डेफिनेशन आ गई है कि जब हमारे विचारों की ऊर्जा, इंग्लिश में क्वांटम हीलिंग कहते हैं, जब हमारे विचारों की ऊर्जा अच्छी होती है तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छा चलता है, एनर्जी फ्लो चलता है, और उससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है। तो दो तरह के सिस्टम अभी हो गए हैं, एक एलोपैथिक का मॉडल और दूसरा एलोपैथी के बाहर का मॉडल। एलोपैथी मॉडल में पहले कहा गया था कि बीमारी का कारण बैक्टीरिया, वायरस, जीन्स हैं। अब ऊर्जा वाले जो रेकी हैं, एक्यूप्रेशर है, चाइनीज थ्योरीज हैं, और अभी एलोपैथिक मॉडल में भी आ गया है कि बीमारी हमारे कहीं ना कहीं, जब हमारी प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है, तब बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया हैं, पेट के अंदर भी बैक्टीरिया हैं, वॉर्म्स हैं, पर ये बीमारी तब पैदा करते हैं जब इनका नंबर बढ़ जाए। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, लूज मोशन, सब चीजों के बैक्टीरिया अंदर रहते हैं। इनका नंबर जब बढ़ जाता है तो तब वो बीमारी पैदा करते हैं, और इनका नंबर तभी बढ़ता है जब हमारे प्रतिरोधक शक्ति बीमारी से लड़ने की लड़ाई कम हो जाती है। इसलिए आजकल स्वास्थ्य में सब चीजों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें शरीर को ठीक रखना है, अपने मन को ठीक रखना है, अपनी चेतना शक्ति के विचारों को ठीक रखना है, और किसी भी तरह का मन के ऊपर ब्लॉक पैदा नहीं करना है। तो मैं छोटी छोटी चीजें आपको दूंगा, क्योंकि समय अपने पास 7 बजे तक खत्म करेंगे। अब चलते हैं। पहला सबसे बड़ी चीज है, हम सभी जो बाबा के बच्चे बने हैं, और जो मेजर मिस्टेक कभी हमारे भाई बहन करते हैं कि शरीर का ध्यान नहीं रखते, और उसके कारण कई बीमारियां आती है। तो टोटल आत्मा और शरीर दोनों को ठीक रखना है। अब शरीर को ठीक करने के लिए पहली चीज, अपना वजन जहां तक हो सके ठीक रखो। हरेक का वजन अपनी हाइट के हिसाब से हो सकता है। अगर आपका हाइट 5 फीट है तो 60 इंच हुआ, तो मेरा वजन 58 से 60 के बीच में होना चाहिए। बहनों का वजन 56 से 58 के बीच में होना चाहिए। बहनों को थोड़ा और कम रखना चाहिए। जहां तक हो सके अपना वजन पेट के ऊपर ना बढ़े। जब वजन पेट के ऊपर बढ़ता है तो तब बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब पेट पे वजन बढ़ता है तो हृदय की गति के ऊपर असर आता है, सांस की प्रणाली पर असर आता है, फेफड़े के ऊपर पथरी बनने के चांसेस हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, घुटनों के दर्द बढ़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने पेट के वजन को ठीक रखें। इसका भी फॉर्मूला होता है, वो नहीं देते क्योंकि सब मिक्स क्राउड है। उसको कैलकुलेशन के लिए सिंपल तरीका ये है कि छाती और पेट, जहां तक हो सके छाती प्रोमिनेंट रहे, पेट अंदर रहे। पर होता क्या है, पेट प्रोमिनेंट हो जाता है और छाती अंदर चली जाती है। तो पेट के वजन को ठीक रखें, क्योंकि इससे पूरे शरीर के ऊपर असर आ जाता है। पेट के वजन को ठीक रखने के लिए क्या करना है, रोज पैदल जरूर करना है। सबसे सिंपल एक्सरसाइज हम सभी भारतीयों के लिए वॉकिंग, और वॉकिंग यानी हरेक के लिए कंपलसरी है, चाहे वो यंग भाई बहन है या बड़े हैं, सबके लिए 21वीं सदी में। जैसे खाना खाना, आजकल मैं कहता हूं खाना खाना कंपलसरी नहीं है, नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा, पर पैदल नहीं चलोगे तो जरूर कुछ होगा। खाना एक बार नहीं खा लो चलेगा, पर पैदल नहीं किया तो नुकसान होगा। क्योंकि मैं यहां देखता हूं जब पेशेंट आते हैं उल्टी लेकर आते हैं, लूज मोशन होके आते हैं, हम उनको जब दवाई देते हैं वो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं खाना खा लूं क्या जाके? अब जब तेरे को उल्टी हो रही है, डायरिया है, फिर क्यों पूछ रहा है खाना खा रहे हैं? तो पहली चीज है वॉकिंग, पैदल चलना। अब वॉकिंग कैसे करना है, शुरू में जब वॉकिंग पैदल चलें तो पहले अपने को वार्म अप करें, गर्म करें। वार्म अप का अर्थ होता है गर्म करें। गर्म करने के लिए जैसे यहां खड़े होके पांव को थोड़ा चलाया, ऊपर नीचे किया, सिंपल हल्का सा यही मैंने जम किया धीरे धीरे, हल्का हल्का, या हल्का हल्का पैदल शुरू किया, स्लो स्लो वॉक, जैसे ये डायमंड हॉल लें, तो पहला वॉक धीरे धीरे चलें, सिंपल इजी, क्योंकि एकदम चलेंगे तो पांव में ऐठन आ सकती है, ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, इसलिए इसको पहले पीरियड को कहते हैं वार्म अप, यानी अपने को गर्म करिए, अपने अपने तरीके से करिए, पांव को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, वार्म अप करिए। दूसरा है एक वार्म अप के बाद तेजी से चलिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रिस्क वॉक। अब आप पूरा तेजी से चल रहे हैं, हाथों को ऊपर उठाकर, दोनों को, दोनों पांव को पूरा स्टेप लेकर चल रहे हैं। पहली चीज, शरीर में अगर कोई तकलीफ है, हृदय रोग की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है, आर्थराइटिस है, तो अपने डॉक्टर से चेक करो। मैं जो बता रहा हूं एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बता रहा हूं, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्रिस्क वॉक तेजी से चलिए। कहां तक चलना है इसका एक फॉर्मूला रहता है, जो लिखना चाहे लिख ले। उसको कहते हैं टारगेट हार्ट रेट, THR। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 220 में से अपनी उम्र को कम करिए, 220 माइनस योर एज, 220 में से उम्र को कम करिए, और जो फैक्टर आए उसको 60% से 80% तक लीजिए, 60 से 80% लीजिए, या 0.6 टू 0.8 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे 60 उम्र है तो 200 में से 60 गया 160, 160 का 60% या 80%, 60 से 80% फैक्टर को लीजिए, 0.6 टू 0.8 से मल्टीप्लाई करिए, जो फैक्टर आएगा उसको कहेंगे टारगेट हार्ट रेट। अगर मेरी टारगेट हार्ट रेट आती है 120 से 140, तो मैं क्या करूंगा, ब्रिस्क वॉक करते करते अपने हृदय की गति को 120 तक ले जाऊंगा, और 30 मिनट तक, 35 मिनट तक, 25 से 35 मिनट तक उसी स्पीड से चलते जाऊंगा, ब्रिस्क वॉक करते रहूंगा। बीच में कोई बात करने की कोशिश करे, ओम शांति करने की कोशिश करे, मत करो। हमारे भाई बहन क्या करते हैं, फिर रुक जाते हैं। अब गाड़ी एक्सेलेटर पे चला रहे हो और एकदम ब्रेक मारोगे तो क्या होगा, ओम शांति, कुछ चक्कर नहीं, उसको हाथ हिला दो और आप अपना वॉक मेंटेन करो। ब्रिस्क वॉक किया, फिर उसमें ये देखना है कि छाती में दर्द नहीं हो, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो। अगर छाती का दर्द हो रहा है, बैठ जाओ, उसी समय वहीं बैठ जाओ। अगर कोई तकलीफ नहीं है, उसको 30 मिनट 25 मिनट तक मेंटेन करो। फिर तीसरा फेज है कूल डाउन, यानी अब वॉक को फिर से धीरे धीरे करिए, फिर स्लो स्पीड पे आ जाइए और एक राउंड फिर स्लो स्पीड करिए। तो ये तीन फेसेस हो गए, वार्म अप, एक्सरसाइज, कूल डाउन। इससे क्या होगा, जो धमनियां हैं और हृदय की धमनियां हैं, वो चौड़ी हो जाएंगी, और जब वो चौड़ी होंगी तो अंदर कुछ चिपक रहा है वो कम होगा और खून का फ्लो अच्छा होगा, जिससे कि ऑक्सीजन शरीर को मिलेगी और हर कोशिका को ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि अगर कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो शरीर में डैमेज चालू होता है, इसीलिए जरूरी है, कंपलसरी है, पहला नंबर है एक्सरसाइज, मस्ट। तो वॉक किया, बाकी जिसको जैसी कैपेसिटी है, यंग है, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, वो उनके ऊपर है। जिसको जो एक्सरसाइज अच्छी लगे, स्विमिंग अच्छी लगती है, साइकिलिंग अच्छी लगती है, जरूर करें। क्योंकि हमारा मॉडल गोल्डन एज का क्या है, लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण को कैसे दिखाया है, फिट फिट शरीर से और मन से, डल नहीं दिखाया है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अगर उस एज में जाना चाहते हैं तो अभी से ही प्रैक्टिस करें, तभी हमारे को जो फ्यूचर बॉडी है वो भी अच्छी मिलेगी। तो शरीर को ठीक रखें। दूसरा कंट्रोल खाने के ऊपर करें। खाना सबसे बड़ी कमजोरी ब्राह्मणों की है, इसीलिए ब्राह्मणों की यादगार भी खाने से ही चालू हुई। क्योंकि जब द्वापर के बाद क्या हुआ कि ब्राह्मण कोई खिलाते थे, वो यादगार बनी कि कोई भी चीज है पहले ब्राह्मण को खिलाओ। पर अब धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मणों को भी बीमारियां बढ़ गई। अब ब्राह्मण छह जगह उसको खाना है एक ही दिन में, बेचारा क्या करे, इधर जाए उधर जाए इधर जाए, और हर कोई ब्राह्मण को मीठा बहुत खिलाता हैगा। तो ब्राह्मणों में डायबिटीज बढ़ गई, हार्ट की बीमारी बढ़ गई। तो अब लोग ब्राह्मण भी समझ गए हैं अपने को ठीक रहना है, तो अब वो क्या करते हैं, कच्चा ले जाते हैं, चावल दाल घर पे जाके पकाएंगे, छह जनों से इकट्ठा किया और ले गए। इसीलिए अभी क्या करना है, खाना उतना खाइए जितना मैं उसको बर्न कर सकूं, उसको जला सकूं। हरेक का अपना अपना कैपेसिटी रहता है, इंग्लिश वर्ड है बीएमआर, हरेक का बीएमआर अलग अलग रहता है। अब किसी का खाना जल्दी पचता है, किसी का स्लो पचता है, किस तरह के घर से उसको जीन्स मिले हैं, हरेक का अलग अलग रहता है। तो इसीलिए उतना खाना खाइए जितना आपकी जरूरत है, उससे ज्यादा ना खाइए। इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा, बहुत अच्छा पहले का माना हुआ फिलोसोफर है, आधा खाना, स्टमक जो होता है खाने की थैली होती है, आधा खाना आधा खाइए जिससे कि वो आधा भरे वो थैली स्टमक, फिर 1/4 पानी पीजिए और 1/4 खाली रखिए। तीन देखो, आधा 50% भूख से 50% खाइए, 25% पानी पीजिए, 25% बचा, 25% भगवान को याद करने के लिए खाली छोड़िए। पूरा ही खा लेंगे 100% तो भगवान याद नहीं आएगा। इसीलिए उसने कहा आधा खाना 1/4 वाटर और 1/4 प्रभु की याद से उसको भरिए। खाने के बाद थोड़ा बैठे रहिए, एकदम मत चलिए, क्योंकि अगर खाने के बाद हम एकदम चलते हैं तो दबाव आता है। तो 2-3 मिनट 5 मिनट वहां नहीं बैठ सकते, टेबल के ऊपर यहां आए हैं तो घर में जब आप खाएं तो बैठे रहिए, 10 मिनट बैठे रहिए। इसीलिए एक एक्सपर्ट ने कहा जब हम खाना खाते हैं तो पहले शरीर के लिए खाते हैं, फिर जो 10 मिनट 15 मिनट बैठे वो इंद्रियों को जाता है, पांचों इंद्रियों को जाता है। तो इसीलिए 15 मिनट बैठे। दूसरा, खाना खाते समय जल्दीबाजी ना करें। जो मेजर मिस्टेक आज का व्यक्ति कर रहा है बाहर का, और हमारे भाई बहन भी जो करते हैं, जल्दी जल्दी खाते। अब आप खाना जल्दी जल्दी खाओगे तो क्या होगा, प्लेट में खड़े खड़े होके ही खा रहे हो, तो खाना पचता कहां है। खाना स्टमक में जाने के पहले हमारे मुंह में पचता है। भगवान ने दांत कहां दिए हैं, मुंह में। अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो बेचारा मुंह में तो खाना मिक्स होता नहीं है, स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक में तो दांत दिए नहीं है भगवान ने जो वहां पचे, तो इसलिए गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी, वजन का बढ़ना। गैस बनने का मेजर प्रॉब्लम और पेट के दर्द का मेजर प्रॉब्लम या डायरिया होने का मेजर प्रॉब्लम यही रहता है, जल्दी जल्दी खाना। इसलिए खाना खाते समय शांति से खाएं। उस समय मन को वापस आत्मा के कॉन्शियसनेस में आ जाए, अपनी सीट पर सेट होकर धीरे धीरे खाने को एंजॉय करिए। खाने से शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसी को हम जल्दी जल्दी करके 10 मिनट में खा लिया तो गैस होगा ही, खाना पचेगा ही नहीं, पथरी बनेगी बनेगी। फिर ज्यादा प्रॉब्लम हमारे ठीक से न खाने के कारण होते हैं। इसीलिए खाने को खुशी के साथ खाएं, इंजॉय के साथ करें। जब गुस्सा हो, मूड ठीक नहीं है, चिड़चिड़ापन है, मत खाइए, उससे वो नुकसान होगा। नहीं तो क्या होता, खाना भी आजकल खाना एक काम हो गया, काम पूरा कर लो, भूख है नहीं, घंटे बज गई 12 बजे की, खा लिया जाके। नहीं अब भूख मत खाओ, कोई बात नहीं, पर अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो तकलीफ होगी ही होगी। तीसरा, खाने के साथ बहुत पानी न पीजिए। अगर खाने के साथ पानी बहुत मिक्स करते हैं तो वो भी नुकसान करता है। एक दो चम्मच सिप कर लिए ठीक है, पर कंट्रोल करके एक घंटे बाद, दो घंटे बाद पानी पीजिए। खाने को बहुत मिक्स नहीं करिए। जो नेक्स्ट नुकसान भारतीयों में देखा गया कि खाना मिक्स बहुत करते हैं, यानी दाल भी ले ली, चावल भी ले लिया, दही भी ले लिया, चाय भी ले ली, दूध भी मिल रहा है, खा लो, खाना अभी खाया डिनर और दूध मिल रहा है, दूध भी पी लो ऊपर से। अब क्या होगा, फल भी मिल रहा है, फल भी खा लो, आइसक्रीम भी मिल रही है, आइसक्रीम भी खा लो, सलाद भी मिल रहा है, सलाद भी खा लिया सब। अब क्या बेचारा स्टमक क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, सलाद भी गया, दही भी गई, चाय भी गया, दूध भी गया, तो कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। तो इसीलिए खाने को ज्यादा मिक्स न करें, जहां तक हो सके दूध और फल वाली चीजें उसको अलग रखें। दूध को, फल को खाने के साथ मिक्स न करें। फल का डाइजेशन अलग है, अगर मैंने फल खाया तो फटाफट स्टमक में जाएगा और नीचे चला जाएगा आधे घंटे में। खाना खाया तो वो यहां 4 से 6 घंटे पड़ा रहेगा, डाइजेस्ट होगा, मिक्स होगा, और फिर नीचे धीरे धीरे जाएगा, बड़ी छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में। उसका डाइजेशन अलग है, इसको एसिड चाहिए और फलों को एसिड नहीं चाहिए, वो खुद ही डाइजेस्ट होके नीचे चला जाएगा। अब मैंने फल भी डाल दिए, खाना भी डाल दिया, तो एसिड के कारण पूरा नुकसान होगा, इसके कारण गैस का प्रॉब्लम होता है। दूसरा मेजर रीजन गैस बनने का हमारे भाई बहनों में यही है कि वो मिक्स खाना बहुत करके खाते हैं। चटनी भी खा ली, फुदीने की चटनी खाई, टमाटर की चटनी खाई, नारियल की चटनी खाई, दूध भी पी लिया, दही भी ले ली, चाय भी ले लिया, तो क्या होगा, चटनी पूरा अंदर उसको चेंज करेगी और फर्मेंटेशन होगा। इसीलिए खाने के समय दूध, दूध से बनी चीजें और फल गैप देकर खाइए। अब हरेक की पर्सनालिटी अलग अलग रहती है, किसी की वात, पित्त, कफ, ये तीन तरह की प्रकृति रहती है। हरेक अपनी प्रकृति को समझकर खाए। अगर मेरी प्रकृति को दूध अच्छा नहीं लगता है, खांसी हो जाती है, सांस फूलती है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो न खाएं, न लें। दूध भी ले रहा हूं फिर कहता हूं मेरे को खांसी हो रही है, दूध हो रहा है, एलर्जी है। तो अपनी प्रकृति को समझिए और प्रकृति के अनुसार वो चीजें लीजिए जो मेरे शरीर को ठीक लगती है, और हरेक को पता रहता है कौन सी चीज मुझे तकलीफ देती है। तो खाने को मिक्स बहुत ज्यादा ना करें, फल 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद खाएं, सलाद जरूर लें, जहां तक हो सके सलाद को सुबह या लंच तक ले लें, रात को सलाद गैस कर सकता है, तो इसीलिए सुबह को कुछ अंकुरित जरूर लीजिए। आजकल सबसे अच्छी डिश जो मानी जाती है, अंकुरित मूंग, मेथी, चना, अच्छा अंकुरित करिए, पानी से अच्छी तरह, गर्म पानी से धोकर, कच्चा नहीं खा सकते तो एक सीटी देकर भी उसको सुबह प्रेशर कुकर की उसको लीजिए, उसके ऊपर नींबू डालिए, हरी मिर्च ताजी वाली डालिए, ककड़ी और टमाटर डालिए। इस डिश में वो सब चीजें हैं जो डॉक्टर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, खून के थक्के को कम करने के लिए, इंसुलिन को ठीक करने के लिए गोलियां दे रहा है। अगर ये रोज खाएंगे तो आपको दवाइयों की मात्रा खुद ही कम हो जाएगी, 70% दवाई कम हो जाएगी। अच्छी तरह वो नाश्ते के समय लीजिए, इसको कहते हैं फाइबर। फाइबर यानी रेशा। रेशा क्या करता है? झाड़ू का काम करता है। सबसे पहला काम सुबह क्या करते हैं हम लोग? घर को साफ करते हैं। इसी तरह से शरीर का घर क्या है? आंतें। आंतों को रेशा साफ करता है, तो उसको वो झाड़ू से साफ करता है। फिर कुछ भी दलिया, इडली, जो भी जिसका कल्चर है उसके अनुसार नाश्ता करिए। जहां तक हो सके पराठे, थेपले, इसका उपयोग कम से कम। एक पराठा खा लिया तो आपकी 50 से 70 कैलोरी बढ़ गई, और अगर आप उसको बर्न नहीं कर सकते तो वजन बढ़ना शुरू हुआ। वजन को कम करने का सिंपल तरीका यही है कि आप अपने खाने में से पराठे बंद कर दो, देखो खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो लाइट अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। कोई भी चीज को, तली हुई चीज को कम से कम लीजिए। पकोड़े, समोसा, कचौरी, कोई भी चीज जो ज्यादा तली जाती है तेल में, वो नुकसानकारक रहती है। और तेल को बार बार उपयोग में न लाएं। अगर एक बार तेल को यूज किया है उसको रख न दें, फेंक दें। बार बार तेल को यूज करते हैं तो वो तेल कई तरह के कैंसर और कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। वो 20 रुपए के चक्कर में ना जाइए कि तेल बच गया, 20 रुपए मैंने बचा लिए, वो फिर डॉक्टर को 1.5 लाख देना पड़ेगा बायपास सर्जरी का। तो वो 20 रुपए ठीक है, उसको उतना ही तेल लीजिए जितना जरूरी है। और एक व्यक्ति को दिन में 2 से 3 चम्मच तेल से ज्यादा जरूरत नहीं रहता। खाना ऐसा बनाए जो खाने की सब्जी में तेल ना दिखे, नहीं तो क्या होता है महाराष्ट्र में, जब तक तेल नहीं दिखे खाना क्या खिलाया। तो ऊपर से ना डालें उसको, कम से कम तेल का उपयोग लें। अलग अलग तेल आते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। कोई भी तेल अच्छा या बहुत अच्छा कह नहीं सकते, हर तेल की अपनी अपनी परसेंटेज है, कितना अच्छा होता है कितना वो कम अच्छा होता है, अलग अलग क्वालिटी रहती है। जहां तक हो सके तेलों का उपयोग चेंज करके करिए, कभी सोयाबीन का तो कभी सूर्यमुखी का, कभी मूंगफली का, कभी कोकोनट का, कभी सरसों का, चेंज करिए। उससे क्या होता है, जो एक में कम है दूसरे में मिल जाता है। उसका इंग्लिश काफी डिटेल है डाइट का, तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसका अलग अलग यूज करिए। फिर रात को खाना हल्का खाइए। रात का खाना जहां तक हो सके सोने के 2 घंटे पहले खा लीजिए। वजन बढ़ने का एक कारण यह भी होता है कि जब व्यक्ति रात को देर से खाता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन रात के 8 बजे के बाद कम होना शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा पावर 11 से 1 बजे दिन में रहता है डाइजेशन का, फिर उसके बाद कम होता जाता है। और रात को 8 बजे के बाद खाना खाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम देगा ही। इसलिए बहुत देर हो जाए तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं खाना खाने की। जैसे कभी कभी मैं देखता हूं बाबा का टर्न होता है और 11:30 बजते हैं, लोग भागते हैं खाना खाने, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले से ही कमरे में थोड़ा सा दूध रख देते हैं, पी के सो जाते हैं। उस समय अगर हम खाना खाएंगे डाइजेशन तो है ही नहीं, एसिड को जो बनना था बन गया, अपने समय पर एसिड बनता है। ये बॉडी का रिदम ऐसे चलता है जिसको कहते हैं सिकर्डियन रिदम। अब आपने उस समय खाया, एसिड तो बन नहीं रहा है, तो वो खाना गैस प्रॉब्लम देगा ही देगा। इसीलिए रात का खाना 2 घंटे पहले, और हल्का खाना खाइए। रात का खाना सबसे हल्का होना चाहिए। हम लोग तो जहां तक एडवाइस करते हैं, सब्जी, रोटी और सूप। दालें भी दिन में खाइए, रात को दाल हेवी वाली ना खाएं। और रोटी अगर बनाना है अच्छी वाली, तो उसमें गेहूं, सोयाबीन, चना, जौ डाल सकते हैं। उस मिक्स आटे की रोटी खाते हैं तो उसमें भी रेशा ज्यादा रहता हैगा। तीनों मिक्स रहें या चार मिक्स रहें, वो रोटी में काफी ताकत रहती है और वो हमें शक्ति देती है। सोयाबीन बहुत अच्छी चीज है, आजकल इसका उपयोग काफी हो रहा है और सोयाबीन हमारे कई बीमारियों को ठीक करता है, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर को भी कम करता है और इसलिए बहुत जरूरी है बहनों के लिए पत्ता गोभी और सोयाबीन की सब्जी सप्ताह में जरूर खाएं। उसमें वो केमिकल रहते हैं जो इस कैंसर को और हृदय रोग की बीमारी को भी कम करते हैं। ग्वार, फ्रेंच बीन्स डायबिटीज के लिए अच्छे हैं, जिनको ब्लड शुगर की लेवल ज्यादा रहती तो चना भी अच्छा है, वो इंसुलिन को सेंसिटाइज करता है। मेथी के दाने सुबह खाते हैं तो वो भी सेंसिटाइज करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। तीसरा चीज है हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक रखें। ये हार्डवेयर था, शरीर का वजन एक्सरसाइज से और खाने से ठीक रखा, इसीलिए मैंने कहा खाने पे पूरा अटेंशन रखना है, उतना खाइए जितना जरूरी है। तीसरा चीज आ गई, हमारा मन को शांत रखें। अभी जितनी भी बीमारियों का मेजर कारण रहता है उसका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर अपने मन में लड़ाई चल रही है। सीधा कारण अगर बोलूं तो कहीं ना कहीं उसकी अपने आप से लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को हमें कम करना पड़ता है। और बाबा का ज्ञान जो भी आपको मिला है उसका यूज करिए, उपयोग में लाइए। ज्ञान को केवल सुनिए नहीं, जो भी बाबा के महामंत्र रहते हैं, जो भी मूल्यों में आप सुनते हैं उसको सुनकर उसका उपयोग करें। मैंने पहले दिन भी बताया था फर्स्ट डे वाले में भी कि जितना हम ज्ञान को चिंतन में लाते मंथन में लाते हैं तो मन कंप्यूटर हमारा स्ट्रांग होता है, शक्ति आती है। और अभी 21वीं सदी में मैच जीतना है तो आपको अपना मन आत्मा स्ट्रांग, मन को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। अगर मन सेंसिटिव है, चिंता करता है, चिड़चिड़ापन है, खुशी नहीं है, बिना कारण से दुखी रहते हैं, निराशा रहती है, ये सब है कहीं ना कहीं मन का प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे अच्छी चीज है जो बाबा हमेशा कहते हैं और हमारी दादियां भी कहती है, खुशी। संगम युग का सबसे बड़ा टॉनिक क्या है? खुशी। रोज खुशी की इंजेक्शन लगाइए, रोज अपने में खुशी को पैदा करिए। खुशी भी हमारी बीमारियों को कम करती है। ये देखा गया कि जो व्यक्ति खुश रहता है, अच्छी तरह जीवन को ठीक से लेता है, वो जल्दी स्वस्थ होता है या स्वस्थ रहता है। पर जो व्यक्ति सीरियस रहते हैं, चिंता करते हैं, वो लोग जल्दी बीमार होते हैं। इसीलिए रोज सुबह उठकर अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज के बाद दूसरा टॉनिक लीजिए, खुशी। और मन में संकल्प ले लें कि मुझे खुश रहना ही है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। इसलिए जब किसी भी सीन को देखें, किसी भी परिस्थिति को देखें, बाबा ने क्या कहा, कार्टून जैसा देखें, कार्टून शो चल रहा है। अब कार्टून शो में, मूवी में हर एक्टर अपना अपना पार्ट प्ले करता है, कोई गुस्सा करता है, कोई कुछ करता है, उसके पार्ट को देखकर, उसके संस्कार को देखकर हम दुखी ना हो जाएं। इसलिए कभी कभी आजकल हम कहते हैं चार तरह के दुखी हो गए हैं, एक खुद के दुख से दुखी, दूसरा दूसरों के दुखों से दुखी, तीसरा दूसरों के सुखों से दुखी, चौथा बिना कारण दुखी। ये नंबर तीन और चार बढ़ते जा रहे हैं। हमें नंबर तीन और चार में नहीं जाना है, क्योंकि कहा गया भारतीयों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो दूसरों के सुखों से जल्दी दुखी हो जाता है, तो हम वो नहीं होए। और चौथा, बिना कारण दुखी, कईयों को अच्छा ही लगता है दुख में ही रहना, क्या है, नहीं सब कुछ है फिर भी दुखी है। जैसे हम लोग जोक में बोलते हैं, एक व्यक्ति के पास इतना धन था कि उसकी छह पीढ़ी खा सकती थी, इतना पैसा था, फिर भी चिंता में घूमता रहता था। लोगों ने कहा, सर आप क्यों चिंता में, आपके पास तो इतना पैसा है कि छह पीढ़ी खा सकती है, मैं सातवीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। तो ये बिना कारण दुखी हो गया। तो ये नंबर तीन और चार नहीं बनना है। कभी कभी हमारे भाई बहन भी क्यों दुखी हो जाते हैं, अरे क्या होगा, मेरा पाठ क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसकी चिंता करते रहते हैं, वर्तमान को नहीं देखते। हमेशा अपनी शक्ति, मन वर्तमान में लाइए। इसीलिए कहते हैं भविष्य क्या है, कल्पना है, जो गुजर गया वो क्या है, भूतकाल है, भूत कल्पना, और प्रेजेंट क्या है, कैश है। प्रेजेंट अपना, वर्तमान अपना है, भविष्य कल्पना है, और वो भूतकाल है। तो मेरे हाथ में क्या है, वर्तमान है। वर्तमान को ठीक नहीं करूंगा तो मेरा अगला पद भी ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए इस समय मेडिटेशन का अर्थ होता है बार बार अपने मन को वर्तमान में लाइए। जब कभी भी हमारा मन भविष्य की तरफ जाता है, चिंता करता है, तो तकलीफ होगी होगी। इसी को कहते हैं एंजाइटी, इंग्लिश वर्ड है एंटीसिपेटरी स्ट्रेस, यानी इसको कहते हैं कि मैं जो घटना हुई नहीं उसके बारे में वर्तमान में चिंता करते जाना, हुई नहीं अभी पर मैं पहले से ही उसके बारे में चिंता कर रहा हूं, तो क्या होगा, हमारा मन क्या करता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस शरीर का ये है कि हमारा मन डिफरेंस, अंतर नहीं करता कि रियल क्या है और अनरियल क्या है। अगर मैं यहां खड़ा हूं, सोच रहा हूं क्या होगा, कैसे होगा, ट्रेन जा रही है, ट्रेन ठीक से आएगी कि नहीं, कोई लेने आएगा कि नहीं लेने आएगा, फ्लाइट में क्या होगा, तो ये मन क्या करेगा, सबकी सब खबर शरीर को देता जाएगा, क्योंकि वो अंतर नहीं करता है कि अभी ये प्लेन में बैठा है या नहीं बैठा है। मैं तो अभी यहां प्लेन में बैठ गया, तो पूरा मन इस शरीर को भेज रहा है खबर, इसको बहुत चिंता हो रही है, बहुत घबरा रहा है, डर रहा है, तो शरीर क्या करेगा, मन घबरा रहा है तो शरीर कहेगा मैं भी घबराऊं, तो फिर शरीर क्या करेगा, पूरे खून को घबराने के लिए, सबसे खून ज्यादा क्या कहां चाहिए, जब व्यक्ति को डर लगता है, जैसे सामने शेर आ गया सडनली, तो व्यक्ति को क्या चाहिए, भागना है, शेर को देखा डर लगा भागेगा, तो खून कहां चाहिए भागने के लिए, पांव में। तो जब कभी भी हमें बिना कारण डर लगता है, एक्चुअल डर नहीं है, बिना कारण डर लग रहा है, तो खून कहां आ गया, पांव में। अब खून कहां चाहिए, आंतों में, मस्तिष्क में। अब आंतों को खून नहीं मिला तो एनर्जी नहीं बनी, शक्ति नहीं बनी, रिपेयर जो बॉडी में होना था वो नहीं हुआ, बीमारी चालू हो गई। इसलिए बिना कारण से डर लगना, बिना कारण से चिंता रहना, वही बीमारी को जल्दी जल्दी लाता है। खून यहां नहीं जा रहा है, खून यहां जा रहा है, मेरे को हर बार डर लग रहा है, तो हर बार हार्ट क्या कर रहा, खून यहां भेज दे रहा है। अब मैं कुछ कर तो रहा नहीं हूं, पहले का व्यक्ति तो करता था, ये कहां से आया, जब पहले लोग जंगल में रहते थे तो जंगल में उनके सामने केवल एक ही परिस्थिति आती थी, क्या आती थी, शेर आया सामने, जानवर आया, तो उसके सामने दो रास्ते रहते थे, क्या करेगा, या तो मैं अगर शक्तिशाली हूं तो शेर से लड़ूंगा, आजा, और नई शक्तिशाली हूं तो भागूंगा शेर से। तो यही दो टर्म मेडिकल साइंस में आई, लड़ो या भागो। पर आज के व्यक्ति के सामने शेर नहीं है, पर सिचुएशन वही वाली है, लड़ो या भागो। ये तो अच्छा था, लड़ो, अपनी शक्ति को यूज कर लो, भागो, खून जो यहां आया उसका यूज हो गया। पर अब न लड़ता है न भागता है, तीसरा आ गया है, वहीं का वहीं खड़ा हो जाता, ठंडा, फ्रीज। इसलिए हार्ट अटैक हो जाता, खून यहां चला गया, खबर आई, कुछ खबर सीरियसली ले ली, बहुत सीरियसली ले ली, यहां खून पहुंचा नहीं क्योंकि सब खून यहां इकट्ठा हो गया, हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि मन जो भी यहां आता है इधर भेज देता है। अगर बाबा ने हमें यहां प्रेशर कुकर जैसा सेफ्टी वॉल दे दिया होता कितना अच्छा होता। प्रेशर कुकर में क्या होता है, सीटी बजने लगती है तो प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगर बाबा यहां सीटी सेफ्टी वॉल दे देता, डर लगा, गुस्सा किया, चिंता की, टेंशन किया, सीटी बज जाए, ठीक हो जाओ, अभी सीटी बज गई है, ठीक हो जाओ। पर वो सीटी यहां नहीं बजती, सीटी यहां बजती है, इसीलिए बीमारियां बढ़ रही है बिना कारण से। डर, ज्यादातर डर हमारे खुद के हैं। 99% फियर व्यक्ति का खुद का होता है, रियल नहीं होता है, अनरियल होता है। बचपन से जो उसके अंदर गया, अंधेरे में नहीं जा, वो डर हर व्यक्ति को रहता है। पर बिना कारण का डर 99% इमेजिनरी है। इसीलिए लोग ज्यादा सांप के काटने से नहीं मरते, उसके डर से मरते हैं। ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, नॉन पॉइजनस रहते हैं, पर व्यक्ति को लगा कुछ काटा, शॉक हुआ और गया। एक व्यक्ति एक हलवाई के यहां जाता था रोज दूध पीने, एक बार दूध पी के चला गया तो हलवाई कढ़ाई को साफ कर रहा था तो उसमें एक मरी हुई चिपकली थी। तो हलवाई ने सोचा, अरे वो व्यक्ति लास्ट में गया दूध पी के, उसको कुछ हो गया होगा, कुछ ना हो ना जाए। गलती से 7 दिन तक वो व्यक्ति हलवाई के पास नहीं आया, तो उस हलवाई को लगा वो व्यक्ति तो चला गया होगा। 8वें दिन वो व्यक्ति आया तो हलवाई को बड़ा अच्छा लगा, अरे ये वापस आ गया है। अब उसको बोला, अरे बड़ा खुशी हुई आपसे मिलकर, उस दिन आप दूध पी के चले गए थे तो उसमें एक मरी हुई छिपकली थी, आप जिंदा हो, बहुत अच्छे हो। उस आधे घंटे के बाद उसको हार्ट अटैक हो गया। क्या हुआ, मन का शरीर के ऊपर असर इतना होता है। अभी 2 टर्न पहले एक बहन को देखा, बहन बहुत एक्टिव, अलर्ट, सुबह देखो तो बहुत एक्टिव, शाम को देखो मैं चल नहीं सकती, बिल्कुल ऐसी खड़ी हो जाएगी। क्या था, डिप्रेशन, निराशा अंदर ही अंदर। सुबह उसको चार्ज करो ठीक हो जाए, फिर शाम को नहीं मेरे लिए गाड़ी मंगाओ, व्हीलचेयर मंगाओ, कभी गर्दन ऐसी कर दे, कभी कुछ कर दे। कहां था प्रॉब्लम, निराशा, डिप्रेशन। इसीलिए निराशा का अर्थ है विचार पैदा करने की टेक्निक को वो व्यक्ति भूल गया है, उसके अंदर ऊर्जा वाले विचारों की कमी आ गई है। और आने वाला समय WHO ने कहा है हृदय रोग के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्यक्ति का होगा वर्ल्ड में, निराशा। इसलिए बाबा हमें चार्ज कर रहा है, शुरू से ही पुरुषार्थ करा रहा है कि जब हम रोज अपने में खुशी भरेंगे तब वो निराशा गायब होगी। खुशी कोई आपको देगा नहीं, खुशी की कोई दुकान नहीं है कि रोज लाएं उससे ले लें, खरीद लें, खा लें। खुशी हमें रोज अपने में पैदा करना पड़ती है। अब ऐसा समय है 21वीं सदी, जो एक बहुत बड़े एक्सपर्ट ने लिखा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन जिंदा रहेगा, पहला जो व्यक्ति मन से शक्तिशाली है, दूसरा जो खुश रहना जानता है, तीसरा जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वो लोग जिंदा रहेंगे। इसीलिए कहा कि रोज अपने में खुशी को पंप करिए, भरिए। किसी से खुशी मांगे नहीं कि वो मुझे कुछ बोले तो मैं खुश हूं, अच्छे शब्द बोले तो नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए इंग्लिश में आजकल हम कहते हैं टफ पर्सनालिटी। क्या है टफ? यानी स्ट्रांग वाली। मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, क्या कर सकते, हमारे हाथ में है क्या? जैसे एक माता आई थी, बड़ी अच्छी माता थी, उसका हाथ का फ्रैक्चर हो गया। हमने पूछा कैसा लग रहा है माता, कहती बड़ा मजा आ रहा है, हाथ का फ्रैक्चर हुआ, पांव का थोड़ी हुआ, पट्टा लगा के मैं घूम रही हूँ, क्लास कर रही हूँ, बाबा से मिल रही हूँ। और सबसे ज्यादा फायदा बाबा ने मुझे दे दिया, अब घर जाकर 3 हफ्ते काम नहीं करना पड़ेगा। देखो भगवान क्यों फ्रैक्चर देता है, भगवान फ्रैक्चर क्यों देता है, कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आराम चाहिए। आराम नहीं कर रहा है, भाग रहा है, तो बाबा क्या करता, अब इसको रोके कैसे, ब्रेक कैसे लगाए, तो उसको फ्रैक्चर दे देता है। इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में कहा था दोनों का यूज करो, कहां भागना है, कहां ब्रेक लगाना है, दोनों आना चाहिए। नहीं तो क्या होता, हमारे भाई बहन भी सेवा 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 सेवा, उनको लगता मेरे बिना सेवा ही नहीं होगी, हम ही हैं सेवा के लिए, भागते रहते हैं भागते रहते हैं। तो जो 3 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा कमजोर, सेवा डिस्चार्ज बैटरी से सेवा कर रहे हैं, बीमार होंगे ही। किसी भी हालत में मेरी स्वस्थिति खत्म ना हो, वो सेवा कोई काम की नहीं जो खुशी नहीं दे, उसको छोड़ दो, अपनी स्वस्थिति को ठीक करो। नहीं तो कई माताएं बहनें यहां आके मैं देखता हूं, क्यों आए हो, चक्कर खा के गिर रही है, सेवा। मैंने कहा सेवा तो आप वहां भी कर सकते हो, कुछ भी सेवा कर सकते हो, सेवा स्थूल नहीं है, सेवा हमारे संकल्पों की है। सबसे बड़ी सेवा इस साल बाबा हमसे चाहता है, जो 9 मुरलियों में बार बार बाबा ने कहा, अपनी चलन और चेहरे को इतना अच्छा बना दो कि बाप आपके द्वारा प्रत्यक्ष हो। ये सबसे बड़ी सेवा यज्ञ को बाबा को दे सकते, बाकी सब सेवाएं सेकेंडरी है, पहली वो सेवा है। अगर वो सेवा ठीक नहीं तो कोई फायदा नहीं, बीमारी होगी होगी। तो इसीलिए सेवा भी उतनी करें जितनी आपकी कैपेसिटी है, लाइफ के डिसीजन भी संभल कर लें, जीवन में जो भी सोच डिसीजन लेना है बैलेंस में लें। घर गृहस्थ वालों के लिए बहुत जरूरी है अपना बैलेंस खोए नहीं। सबसे बड़ा नुकसान जो ज्ञान के बाद आता है, हम अपना बैलेंस खो देते हैं। बैलेंस नहीं खोएं, जो आपकी जिस तरह की कैपेसिटी है, जो आत्मा में विशेषता है, उसको यूज करिए। जहां भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, जॉब में हो, उसको वहां यूज करिए, वही आपकी सेवा है। अगर आपके सामने 1000 नेगेटिव लोग हैं और आप ही एक पॉजिटिव हो, वही तो सेवा है। कि उन 1000 को आपको चेंज करना है, ना कि उनको छोड़ के अरे मैं नहीं रहूंगा यहाँ क्योंकि यहाँ सब नेगेटिव हैं, मैं यहाँ आ जाऊंगा यानी डर रहा हूं कहीं। उन 1000 को मुझे चेंज करने के लिए बाबा ने वहां भेजा है। इसीलिए अपनी विशेषता को जहां हो यूज करिए। और हर आत्मा में बाबा ने एक विशेषता देखकर यज्ञ में लिया है। हम सभी बच्चों के अंदर एक विशेषता समाई हुई है, उस विशेषता को बाहर निकालिए और उसका उपयोग करिए, और वो जब बाहर निकलेगी तो बीमारी ठीक होगी, वो नहीं निकलेगी तो बीमारी होगी होगी। सप्रेशन करते हैं तो बीमारी आती है, एक्सप्रेशन करते हैं तो बीमारी ठीक होती है। एक्सप्रेशन यानी आप अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को यूज करिए, उपयोग में लाइए, बाबा को बताइए, बाबा से बात करिए। तो मैं अंत में ये कहूंगा, एक गुना खाना खाइए, दो गुना पानी पीजिए, तीन गुना हंसिए, चार गुना एक्सरसाइज करिए, पांच गुना काम करिए और छह गुना बाबा को याद करिए। एक गुना खाना, देखो खाना कितना कम, एक गुना यानी 100 में से 6 को करें तो 20 से भी कम, 17 से 18% खाना, फिर उसका दो गुना पानी, उसका तीन गुना फिर एक्सरसाइज, चार गुना हंसिए, पांच गुना काम करिए और छह गुना बाबा को याद करिए। तो सबसे कम चीज क्या हो गई, अगर मैं देवी देवता बनने वाला हूं तो मेरा पांच इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर पांच इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं, मेरा राज्य ठीक नहीं, तो राजा नहीं बनूंगा। इसीलिए मैंने कहा अगर खुशी वहां नहीं मिलती तो हम लोग कहां खुशी लेते, खाने से। कल डॉक्टर गुप्ता ने बताया होगा आत्मा के सात गुण हमारे शरीर के सात अंगों से जुड़े हुए हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता। और आतों को क्या चाहिए, आत्मा का कौन सा गुण चाहिए आतों को, रिपीट कर देता हूं। चलो ऊपर से चले तो पहला है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क को क्या चाहिए, आत्मा का कौन सा गुण, आत्मा के कितने गुण हैं, सात। सात में से पहला गुण क्या होता है, नॉलेज, ज्ञान। पहला हथियार परमात्मा हम सभी को देता है समझ, नॉलेज। इसलिए कहते हैं नॉलेज इज पावर, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस। तो पहले चाहिए मस्तिष्क को क्या चाहिए, ज्ञान। जितना ज्ञान का मंथन करेंगे ब्रेन शक्तिशाली होगा, मन शक्तिशाली होगा, केवल सुनेंगे चले जाएंगे कुछ नहीं होगा, वैसा का वैसा ही होगा। इसलिए ज्ञान को मंथन करना, मक्खन निकालना है, जो बाबा कहता है जो ओटे सो अर्जुन, अपनी घोट तो चढ़े नशा। इसका अर्थ क्या है, रोज ज्ञान को पीसिए, पीसना यानी मंथन करिए, थोड़ा सुना बैठ जाओ मंथन करो। वो मंथन नहीं करते तो देखो बाहर वाले क्या करते हैं, तंबाकू को पीसते हैं, उनको कहां से लेना पड़ता है, यहां से लेना पड़ता है। हमें क्या सिखाया, यही उसका मंथन करिए। चेहरा, चेहरे को कौन सा गुण चाहिए, दो आंखें, नाक, होंठ, कान, चार इंद्रियां मेजर यहां है। चेहरा कब चमकेगा, आंखों में चमक कब रहेगी, फेस। बाबा ने इस बार यूज किया ना फेस, यहां मस्तक मणि है। फेस को चाहिए प्यूरिटी, पवित्रता। पवित्रता का अर्थ होता है अंदर बाहर एक, सत्यता। इसीलिए शिव के साथ गाया हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो ही सुंदर है। सबसे मेजर क्वालिटी इस यज्ञ में आगे बढ़ना है, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, अंदर बाहर साफ क्लियर। तो आप देखोगे नंबर ऐसे ही मिलता रहेगा, सब कुछ आ जाएगा आपके पास। अंदर गड़बड़ कब की है आदमी की, वो अंदर बाहर एक नहीं रहता। पूरा प्रॉब्लम की जड़ कहां है, मैं क्या हूं और अपने को क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या हूं और मैं क्या अपने को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए ज्ञान में कोई सिद्ध विद नहीं करना है, कुछ सिद्ध नहीं करना है, प्रूव नहीं करना है और न डिसप्रूव करना है, न प्रूव करना है न डिसप्रूव करना है, खड़े रहना है। साक्षी दृष्टा देख रहा है, साक्षी दृष्टा का अर्थ है देख रहा है जो हो रहा है। जहां वो प्रूव करने की चीज होती है वहीं ये मन भागना शुरू करता है, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। प्रूव नहीं करें। ज्यादातर नुकसान भाई बहनों के इसी में होते हैं, वो प्रूव करते हैं। कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैंने उस फर्स्ट क्लास में कहा पुरुषार्थ बदक जैसा। पुरुषार्थ भी कैसे करना है? बदक जैसा। बदक क्या करती है? तालाब में तैरती है। तालाब में पांव उसके कहां रहते हैं? नीचे, पानी के नीचे। ऊपर क्या रहता है? पंख। पंख से क्या करती रहती है बदक? पानी को फेंकती रहती है। और गर्दन क्या करती रहती है? कभी इधर देखेगी, कभी इधर देखेगी। तो वही क्वालिटी हम में चाहिए। पुरुषार्थ कहां करना है? अंदर, अंतर्मुखता। बाहर से लगे नहीं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। नहीं तो कई भाई बहन बस सीरियस, क्या कर रहे हो? योग कर रहा हूं। अगर बाहर से दिख रहा है, इसका मतलब मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। किसी को पता नहीं लगे कि मैं योग कर रहा हूं कि नहीं। पुरुषार्थ अंदर का। पंख से ये क्या करना है? नेगेटिविटी आ रही है, सीन आ रहे हैं, झटक देना है। देखते हुए ना देखना, झटक दिया। गर्दन यूं करना है, यानी सबको हेलो करना है। हेलो हेलो, हाउ आर यू, सब ठीक हो? राजा क्या करता है? राजा जब घर से निकलता है तो क्या करता है? जो मिलेगा सबको हेलो। पेड़ को हेलो, बादल को हेलो, कुत्ते को हेलो, व्यक्तियों को हेलो, सबको हेलो। तो प्रकृति जीत भी, पांचों तत्व को हेलो और सभी को हेलो। तो मैं राजा बनूंगा। राजा बनने का सीक्रेट यही है। कोई बड़ा काम नहीं करना है। राजा बनने के लिए छोटा काम अच्छी तरह करना है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है लीडर की, बहुत बड़े ऑथर ने दी। लीडर्स डोंट डू ग्रेट थिंग्स, दे डू थिंग्स ग्रेटली। इसका अर्थ है लीडर बहुत बड़ा काम नहीं करता है, लीडर छोटे काम को अच्छा करता है। अगर मेरी ड्यूटी सफाई करने की है, उस काम को इतना अच्छा कर दूं, मैं लीडर हो गया। तो रोज जब घर से निकलूं, सबसे हेलो बाय करते निकलूं। तीसरा, फेफड़े को क्या चाहिए? शांति, पीस, शांत। जितना शांत होंगे सांस ठीक चलेगी। आज सांस के प्रॉब्लम क्यों हो गए हैं? प्राणायाम क्यों सिखाना पड़ रहा है लोगों को? सांस लेना भूल गए। सांस लेना भी ठीक से नहीं आता। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा रखते हैं, बाहर निकालते नहीं है। और ज्यादातर हम भारतीयों का नेचर क्या होता है? अंदर ही अंदर रखते जाना। जैसे पैसा भी रखते जाते हैं ना, इकट्ठा करते जाते हैं, तो सांस भी इकट्ठा होती जाती है अंदर ही अंदर। अब क्या सिखाया जाता है प्राणायाम में? सांस लो, ठीक से लो, अंदर लो, बाहर लो। कभी जानवरों को देखा है क्या? चिड़िया को देखा है क्या? कभी सांस के क्लब में जा रही है, प्राणायाम कर रही है? हम लोगों को करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी ये इकट्ठा करने की नेचर और दबाने का नेचर, दबाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं सांस छोड़ो। सिखाया जाता है, करना पड़ता, कंपलसरी है अभी। चौथा है हृदय। हृदय को क्या चाहिए? हृदय रोग की बीमारी क्यों होती? कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने को प्यार नहीं कर रहा है, सूख रहा है, अपने आप से अलग हो गया है, डिसकनेक्टेड हो गया है, या हर चीज को कंट्रोल करने की नेचर है, या बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। वन डे मैच, आजकल लोगों का नेचर क्या हो गया? वन डे, जल्दी जल्दी जल्दी, सब जल्दी जल्दी। अभी फरिश्ता बन जाऊं, अभी बिंदु रूप बन जाऊं, अभी ये हो जाऊं। एक दिन में तो हो नहीं सकते, बहुत काल का पुरुषार्थ। इसीलिए एक समय पर एक चीज, प्यार करिए खुद को। जितना भी अभी मैंने लिटरेचर पढ़ा हेल्थ का, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आया प्यार, लव। यानी लव का अर्थ है अपने को एक्सेप्ट करना, अपने को स्वीकारना और अपनी बातों को शेयर करना, उसको कहते हैं लव। तो हृदय, आतों को खुशी। अब खुशी मुझे नहीं मिली तो मैं कहां से खुशी को ढूंढूंगा? चाहिए तो सही खुशी। तो खाने पे कंट्रोल नहीं, डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, गुलाब जामुन खा लिया, क्या करूं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो खुशी नहीं मिल रही। मैं देखता हूं जो व्यक्ति का खाने पे अटेंशन नहीं रहता, इसका मतलब है उसको जीवन में खुशी नहीं मिल रही। इसीलिए उसको कंट्रोल करना है तो खुशी को पहले पैदा करिए, आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो। हड्डियों को क्या चाहिए? ताकत, पावर, शक्ति। और छह चीज ठीक है तो सातवीं चीज आपकी ठीक होगी होगी, वो पूरे जीवन का रस है, जिसको कहते हैं ब्लिस, आनंद। वो नेचुरल चलेगा, उस व्यक्ति की कंडीशन जो बाबा चाहता है, साक्षात्कार मुहूर्त जैसा चलेगा। उसके आंखें शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ कामना, वो चलता फिरता म्यूजियम हो जाएगा। तो इस साल हम इस तरह की सेवा करने का लक्ष्य रखें। 3 महीने में मुझे बाबा का होमवर्क पूरा करना है, बस, बाकी सब चीजें भूल जाएं। ये 3 महीने जो बाबा ने 6 महीने का होमवर्क दिया है, उसको मैं अटेंशन से करूं, बस उस पे ध्यान दो, बाकी किसी पे नहीं दो, किसी पे नहीं दो। अपनी खुद को देखो, जितना खुद को ठीक रखेंगे हेल्थ ठीक होगी, अपसेट होंगे तो बीमारी होगी। तो अभी हम एक अभ्यास करते हैं, एक गीत बजेगा, उस गीत में आप क्या करना, अपने को खाली करना। पहले अपने को थोड़ा चार्ज करते हैं शरीर से भी, दोनों हाथों को ऊपर करें, ऊपर करें, खींचें, थोड़ा उड़ जाएं, चलो खड़े हो जाएं, अभी बैठे बैठे टाइम हो गया ना। हाँ, फिर योग करेंगे अपन 15 मिनट। दोनों पांव को अंतर रखें और हाथों को ऊपर करें। मेरे बाद किसी की क्लास तो नहीं, खींचे, हाँ, दोनों को खींचे, हाँ, एड़ियों को खींचे, नीचे लाएं, फिर से करें, हाँ, नीचे लाओ, फिर ले जाएं, हाथों को करें, दोनों हाथों, शोल्डर्स को करें ढीला, अपने को बिल्कुल ढीला कर देना है, पांव को करें, हाँ, अब बैठ जाएं। अब सांस को लें और छोड़ें। अब धीरे धीरे सांस को लें और छोड़ें। लें, अनुभव करें और छोड़ें, धीरे धीरे। हर चीज को फील करना है। मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है? जो भी मैं चीज कर रहा हूं, अवेयरनेस के साथ करूं, धीरे धीरे करूं। तो अब सांस को फिर से लें और छोड़ें। जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाए, जब सांस लें तो पेट फूलना चाहिए। फिर से देखें, लेते जाएं, छोड़ते जाएं। फिर अब सांस लें और उसको होल्ड करें, होल्ड करें, वहीं का वहीं रुक जाएं। फिर छोड़ें, फिर रुक जाएं, पेट अंदर का अंदर ही रुका रहा है। देखो, मैं पहले बता देता हूं, रोक लिया, छोड़ा, फिर रोक लिया। ये पेट जितना अंदर की तरफ दबा रहेगा तो ग्रंथि के ऊपर दबाव आएगा और इंसुलिन ठीक से काम करेगी। फिर से लें, फिर से लें। अब मन में संकल्प लेकर सांस को लेना। अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। हर सांस जब अंदर लें तो सोचें, बाबा की शक्ति को ले रहा हूं अंदर, और जब सांस को छोड़ूं तो मैं शुभ भावनाएं पूरे विश्व को दे रहा हूं। दोनों काम चल रहे हैं। सांस लेते समय बाबा की शक्ति लें और छोड़ते समय शुभ भावनाएं दें सबको। लें और करें, लेते जाएं। मैं बाबा से शक्ति ले रहा हूं, छोड़ें, मैं शुभ भावना, शुभ कामना पूरे विश्व की आत्माओं को दे रहा हूं। अब एक गीत बजाएंगे, इस गीत में अपने अंदर सभी कमजोरी बाबा को दे देना। क्योंकि आप लोग जा रहे हैं यही उसको छोड़ देना। गीत के बोल हैं सब कुछ सौंप दो, तो हम क्या करेंगे गीत के साथ सौंपते जाएंगे, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं चिंताएं हैं यही छोड़ के चले जाना। इसीलिए शिव का गायन है, उसके ऊपर सब कुछ चढ़ा देते हैं, तो अभी हम उसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद अच्छा सा योग की शक्ति, बाबा की शक्ति शरीर के सब अंगों में ले जाएंगे और जहां तकलीफ है वहां जाकर रुक जाएंगे। जहां घुटने का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वहां जाकर रुककर फिर उसको शक्ति देंगे, ठीक करेंगे। तो अभी अपने पास 10 मिनट हैं, जब तक पहला है आराम से बैठें, रिलैक्स होके बैठें, अपनी चेतना शक्ति को दो आंखों के बीच केंद्रित करें, पूरे शरीर को हल्का कर दें, गर्दन पीठ सीधी, सब तरफ से ध्यान हटाकर अपनी चेतना केंद्र पर आ जाएं। दो आंखों के बीच मैं आत्मा विराजमान हूं, अपने अंदर के सभी कमजोरियां डर बाबा को देते जा रहा हूं, सब कुछ सौंप दो। अब इसी ऊर्जा शक्ति को, बाबा की शक्ति को शरीर के सभी अंगों में जाने दें, अनुभव करें शरीर की हर कोशिका परमात्म शक्ति को ले रही है। मैं अनुभव कर रहा हूं हृदय ठीक रीति काम कर रहा है, हृदय की धमनी खुली है, सांस ब्रीदिंग नॉर्मल है, शरीर की हर कोशिका ऑक्सीजन ले रही है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, पूरा शरीर स्वस्थ है। जहां तकलीफ है वहां जाइए और उस अंग को सकारात्मक ऊर्जा दीजिए और अनुभव करिए वो अंग स्वस्थ है। शांति की शक्ति के वाइब्रेशन शरीर की हर कोशिका में जा रहे हैं। वापस दो आंखों के बीच ऊर्जा केंद्र पर आ जाएं और पूरे विश्व की आत्माओं को दिल से दुआएं दें, शुभ भावना शुभकामनाएं पूरे विश्व की आत्माओं के पास जा रही है। दिल से देते चलो दुआएं, अनुभव करो हर आत्मा परमात्म मिलन मना रही है। अंत में एक जोक सुनाकर आपको, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं, एक छोटी बहन कोर्स करा रही थी और कोर्स करा के जब अंदर गई तो बड़ी बहन ने पूछा क्या समझाया, बोला आज तो तीन लोक में से केवल पृथ्वी पर समझाया। तो बड़ी बहन ने कहा अभी तक परमधाम नहीं समझाया क्या, कल जरूर उसको परमधाम ले जाना। वो बाहर भाई सुन रहा था, बोला अरे पता नहीं क्या होगा, कल मुझे परमधाम ले जाएंगे। वो भाग गया वहां से। तो जब खु खुशी मिले खुशी को पैदा करें। फिर से करते हैं, हाथ ऊपर, बोलें बाबा को वाह बाबा वाह, मेरा जैसा पाठ किसी का नहीं, किसी का। और अपनी पीठ थपथपा दें, देखो तुम्हारे जैसा कोई, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं। तो कोई पीठ नहीं थपथपाए तो मैं तो थपथपा सकता हूँ। तो आप सब अपनी यात्रा को अच्छा बनाकर रखें और जल्दी से जल्दी बाबा के घर आए। ओम शांति।